તારીખ 19/11/1997 શ્રી સમયસર ગાથા 153 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 148
શ્રી સમયસર પર માલો પુણ્ય પાપ અધિકાર 153 ગાથા गाथा का हेडिंग यह है। अब यह कहते हैं कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है और अज्ञान ही बंध का हेतु है, यह नियम है, यह शास्त्र मोक्ष के हेतु लिखा गया है। शास्त्र आचार्य महाराज ने किस हेतु से लिखा कि संसारी जीव का परिभ्रमण बंद हो जाए और वो मोक्ष को प्राप्त करे, इस हेतु से इस शास्त्र की रचना हुई है। पाप बंध का कारण है और पुण्य धर्म का कारण है, ये समझ बराबर नहीं है। धर्म के क्षेत्र में प्राय इस प्रकार की मान्यता चल रही है कि पाप बंध का कारण है और पुण्य धर्म का कारण है। आचार्य महाराज कहते हैं कि यह बात बराबर नहीं है। वास्तव में ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है और अज्ञान ही बंध का हेतु है। हेतु मैंने कारण, ज्ञान से सम्यक श्रद्धान होता है, ज्ञान से सम्यक पुरुषार्थ होता है और पुरुषार्थ और ज्ञान से सम्यक आचरण होता है। इसलिए ज्ञान धर्म का हेतु है, मोक्ष का हेतु है। कौन सा ज्ञान? कि आत्मा को अनुभव करने वाला ज्ञान, सिर्फ जानकारी करने वाला ज्ञान नहीं। और अज्ञान ही बंध का हेतु है, वस्तु के स्वरूप का जो अज्ञान है और अपने आप के विषय में जो अज्ञान है कि मैं तो मनुष्य हूँ, मैं जैन बनिया हूँ, कैसा हूँ, मनुष्य हूँ, जैन बनिया हूँ और ऐसा ऐसा मेरा परिवार देहादि सब मेरा संयोग, ऐसा इस सब प्रकार के संयोग वाला मैं हूँ, ये अज्ञान है। वो क्या चीज है? वो अज्ञान है और वही बंध का और परिभ्रमण का कारण है। क्या उसमें रहस्य क्या है, मर्म क्या है? आचार्य महाराज के तेरी देखने की दृष्टि गलत है। का उपाय है जल्दी पकड़ में नहीं आवे तो भले थोड़ी देर लगे, ऐसी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दबाजी से रोग ऊपर से मिटा जाए, इंजेक्शन लेकर के ऑफिस चला जाए, फिर दोबारा रोग हो गया तो दोबारा इंजेक्शन ले लो। बार बार इंजेक्शन लिया, फिर वो डॉक्टर बोला कि भाई बहुत इंजेक्शन दिया, अब तो तुमको 6 महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। ऊपर से दवाई करके जल्दी जल्दी जल्दबाजी में ऑफिस तो भगा
और बिगड़ जाता है काम,
और वो तो और बिगड़ जाएगा। फिर तो बोलेगा कि अब मेरे बस की बात नहीं है, तुमको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, 4-6 महीना लग जाएगा। पर पहले से हफ्ता पर बराबर कर दवाई लिया तो घर में आराम करके, तो ये 6 महीना हॉस्पिटल में जाने की बारी नहीं आती। लेकिन डॉक्टर भी समझता है, तो 10 रुपये आएगा तो 10 रुपये पैसा मिलेगा, फिर 6 महीने वाला पैसा मिलेगा। ऐसे जो गुरु दुकानदारी करता है वो ऐसा ही करता है।
प्रकरण
ये प्रकरण नहीं चलता है, इसलिए तो आचार्य महाराज ने करुणा की कि देखो प्रकरण कोई दूसरा है धर्म के क्षेत्र में, तो बुला हुआ है, ये पुण्य पाप के अधिकार में ये बात करते हैं। वदो नियमानी धरंता ही धरंता शिलानी तहा तवम च कुवंता परमठ बाहिराजे निर्माणम तेण विंदंती। व्रत और नियमों को धारण करते हुए भी तथा शील और तप करते हुए भी जो परमार्थ से बाह्य है अर्थात परम पदार्थ रूप ज्ञान का, ज्ञान स्वरूप आत्मा का जिसको श्रद्धान नहीं है, वे निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। किसको लिया है इधर? व्रतशील संयम आदि पालन करने वाले का दृष्टांत लिया है। जो संसार में व्यापार धंधा इंडस्ट्री कारखाने में कतलखाना में लगा है इसका दृष्टांत नहीं लिया है। किसका दृष्टांत लिया है? कि जो धर्मी होकर बैठ गया है कि मैं तो व्रत पालन करता हूँ, मैं तो संयम पालन करता हूँ, इसका दृष्टांत आचार्य महाराज ने लिया है। व्रत और नियमों का धारण करते हुए भी तथा शील और तप करते हुए भी, तप भी बहुत करता है, चारित्र भी बहुत पालता है, शील मैंने चारित्र, शील मैंने ब्रह्मचर्य आदि, और व्रत मैंने अनेक प्रकार के प्रतिज्ञा नियम लेने वाले। जो परमार्थ से बाह्य है यानी जिसको ज्ञान स्वरूप आत्मा का श्रद्धान ज्ञान नहीं है, वास्तव में मैं कौन हूँ इसका जिसको पता नहीं है, वो मुझे क्या करना चाहिए उसका पता उसके कहाँ से हो सकता है? जिसको यही पता नहीं कि मैं घर में कौन हूँ, मैं ऑफिस में कौन हूँ, मैं समाज में कौन हूँ, वो क्या करेगा? तीनों जगह पे कौन हूँ वही पता नहीं है। ऐसे इधर में धर्म के क्षेत्र में मैं कौन आत्मा कैसा हूँ इसका जिसको पता नहीं है, उसको धर्म कैसे करना उसको पता हो सकता नहीं है। लक्ष्मण रेखा ने व्याख्या सुन स्वरूप सुन, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत, ये तो कैसे के गलत बात है। ये उल्टी बात है, ऐसा इधर कहते हैं कि आत्मज्ञान के बिना जो व्रत तप को पहले करने को मानता है वो चक्कर में पड़ता है, उल्टा चक्कर में पड़ता है वो। ये तो यहाँ वो तो मुद्दे की बात वही तो चल रही है कि धर्म के क्षेत्र में अज्ञान वश सब लोग पहला ऐसा समझ लेते हैं कि पहले पहले व्रत तप करो तो आत्मज्ञान होगा, व्रत तप नहीं करेंगे तो आत्मज्ञान होगा धर्म होगा नहीं। ये बात उल्टी है, विपरीत है। उसमें क्या है, घोड़ा गाड़ी में घोड़ा पीछे और गाड़ी आगे हो गया है, उतना विपरीत है। वो गाड़ी चलने वाली नहीं, एक्सीडेंट होने वाला है, ऐसी बात है। ये तो आचार्य महाराज समझाते हैं कि तूने ऐसा ही किया है अभी तक, अभी तक तूने अज्ञानवश ऐसा ही किया है, ये गड़बड़ छोड़ दे तू, ये तो कहते हैं, कहना चाहते हैं इधर। ठीक है, ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, ज्ञानम एव मोक्ष हेतु। क्या सूत्र लिखा है पहला देखो, ज्ञानम एव मोक्ष हेतु हूँ। ये व्रत धारण किया अज्ञान दशा में, पुण्य बंद किया, वो बंद का हेतु है, मोक्ष का हेतु बिल्कुल नहीं है। ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है क्योंकि ज्ञान के अभाव में स्वयं ही अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के अंतरंग में व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्मों का सद्भाव होने पर भी उसको मोक्ष का अभाव है। कितना व्यवस्थित प्रतिपादन है अमृतचंद जी। आंध्रा ने एक्सीडेंट नहीं सांभ्या तो आपणे आंध्रा थी जाऊ ऐसी एक आर्ग्यूमेंट हमारे व्यापारी करते थे कि देखो हम लोग बहुत समझदार हैं ने, इसलिए हमको ज्यादा दुख होता है, और ये कुत्ता है वो चींटी है वो पशु पक्षी है उसको ज्यादा ज्ञान नहीं है तो वो बेचारा दुखी नहीं है, पर मनुष्य हम कितना उपाधि करते हैं, इतना व्यापार धंधा करना लेन देन करना माथा फोड़ी करना, ये कुछ नहीं है बेचारे को, ये चकली है वो झाड़ पे पेड़ पे जाएगी फल फूल खा करके पेट भर लेगी, कोई उपाधि नहीं उसको, और निगोद के जीव को तो कुछ उपाधि नहीं। क्या बोला वो? चकली को तो उतना भी पेड़ पर जाना पड़ता है, निगोद को जीव को तो कोई उपाधि नहीं, हम लोगों को तो बहुत उपाधि है। तो ये अभिप्राय है वो अधोगति में जाने का अभिप्राय है। क्या?
अधोगति में जाने का।
अंधे का एक्सीडेंट नहीं होता है इसलिए अंधा होना अच्छा है, ये कोई समझदारी की बात
नहीं है,
है। विपरीत बात है सब। ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है और ज्ञान ही सुख का हेतु है। मोक्ष माने क्या? सादी अनंत अनंत समाधि सुख मान, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान सहित इसका नाम मोक्ष है। जैसे कि वो ज्ञान से ही मोक्ष होता है, पुण्य भाव से किसी का मोक्ष होता नहीं है। नौमी गृहवक्त गया, पुण्य करके कहाँ गया? जिन दीक्षा को अंगीकार किया, जंगल में जाकर के तपश्चर्या किया, पंच महाव्रत 28 मूल गुण निरतिचार पालन किया, अतिचार दोष भी नहीं लगाया और नौमी गृहवक्त गया, फिर वहां से एक इंद्री हुआ, ये चक्कर उतना ही उतना चालू रहा है। ये मार्ग ही दूसरा है। क्या
मार्ग ही दूसरा है?
संप्रदाय में कई बात नहीं चलती, दिगंबर श्वेतांबर थानकवासी तेरापंथी तुलसी तेरापंथी चलता है, कहीं ये बात है ही नहीं,
कहीं भी नहीं
ये मार्ग की मोक्ष मार्ग की बात कहीं, सभी जगह बंद मार्ग की बात चलती है। पुण्य करो दान करो तप करो उपवास कर लो व्रत कर लो वो कर लो वो कर लो जाओ तुमको धर्म हो जाएगा। अंधे को अंधा मिला, अंधो अंध पला है। क्या हुआ? अंधो अंध पला है, देह शुद्धि, देह की शुद्धि होती नहीं कभी, वो मल की थैली है। क्या? मल की थैली है, उसमें मल ही निकलेगा। तुम सोना खाओ तो भी मल हो जाएगा, सोने का भस्म खाओ तो भी मल हो जाएगा, घी खाओ तो भी मल हो जाएगा, केसर खाओ तो भी मल हो जाएगा, और मिश्री मावा खाओ तो भी मल हो जाएगा। देह की शुद्धि कभी होती नहीं, आत्मा की शुद्धि का ध्यान रखो, देह को भूल जाओ, देहात्म बुद्धि से देह को पकड़ के बैठे हो तो देह को भूल जाओ, अपना स्वरूप ही नहीं, वो देह है वो आत्मा का स्वरूप ही नहीं। देखो क्या हुआ है कि दाग तो हमारे चेहरे पे हो, कहीं अरीसा में दिखता है तो अरीसा में घिसने लग गया, यहाँ का दाग कैसे निकलेगा? ऐसे अशुद्धि हुई आत्मा में, दोष की आत्मा में, पर देह शुद्धि करने लग गया, गंगा नाया जमुना नाया समुद्र नाया,
ऐसी स्थिति है,
यही गड़बड़ है सब। बहुत गड़बड़ है ये सब, बहुत गड़बड़ है, संप्रदाय में से आते हैं ना, बहुत गड़बड़ है। नहीं साधन वो है ही नहीं, साधन वो है ही नहीं, पहले तो ये भूल जाओ कि ये साधन है ही नहीं। ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है इसलिए ज्ञान ही साधन है। कौन साधन है? मोक्ष के कारण में ज्ञान ही कारण है और ज्ञान ही साधन है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में स्वयं ही अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के, आत्मज्ञान के अभाव में स्वयं अज्ञानी होने वाले अज्ञानियों के अंतरंग में क्या होता है कि व्रत नियम सत शील तप इत्यादि शुभ कर्मों का सद्भाव तो होता है, वो भले व्यापार धंधा गृहस्थी नहीं करता है, दीक्षा लेकर के व्रत नियम संयम पालता है, पर उसको मोक्ष का अभाव है, उसको मोक्ष कभी होता नहीं है। वो पुण्य बंधु करके स्वर्ग में जाएगा, वहां से एकंद्री होकर के फिर अनंत संसार में भटकेगा।
बहुत कड़ी बात लगती है, ये वाली बात सुनने बहुत कड़ी लगती है, एकंद्री हो जाएगा।
बात थोड़ी कठोर लगती है, लेकिन क्या करें,
क्या करें?
मामूली माइल्ड बातों की असर नहीं पहुंचती है, इसकी असर नहीं पहुंचती है। बहुत तेरे पानी मांग गया, बात तो आज है, खरी बात है।
ये तो बाह्य होते हुए इसमें अंतरंग क्यों
नहीं था? अंतरंग में उसको श्रद्धा ज्ञान में वो बात है कि इससे मोक्ष होगा, इसके अंतरंग में मैंने श्रद्धा ज्ञान में वो बात है कि मैं व्रत पालूंगा, उपवास करूंगा, तो मेरे आत्मा का कल्याण होगा, ये इसके अंतरंग में पड़ा है। तो आचार्य महाराज ने नाड़ पकड़ी है, क्या
नाड़ पकड़ी है?
कि तेरे पेट में तूने क्या खाया है ये तेरे नाड़ी बताती है। भले तूने एक महीने पहले खाया हो, हमारी उपस्थिति नहीं हो, लेकिन हम जानते हैं कि तूने क्या खा लिया है। ऐसे तुमने व्रतशील संयम करके कितना अज्ञान का पोषण किया है, उसको साधन मान करके वो हमको पता है। दूसरा आगे कोई बोले ना तो लड़ाई करे लोग, ये तो महान आचार्य हैं, ऐसे लिखते हैं, इसलिए सबको बैठना पड़ता है संप्रदाय वाले को। बाकी तो कोई साधारण आदमी बोले ना तो मार करके भगा देवे उसको, चले जाए इधर से। तो हमको ऐसा कहता है, तो हमने दीक्षा लिया, साधु हो गया, स्त्री को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, और तुम हमको कहता है कि बंध का कारण है, मार मार के भगा देवे। लेकिन ये तो महान आचार्य है, वो जंगल में बैठ करके लिखते हैं, सर्वसंग परित्याग करके बैठे हैं वो, तो उनको तो कोई बोल सकते नहीं। अपन जैसे बोले तो बोलेगा तुमको तो क्या है, घर में रहना है, मोटर में फिरना है, पलंग में सोना है, और माल माल खाना है, बादाम पिस्ता खाना है, और तुम ये बात करते हो कि व्रतशील संयम मत करना। लेकिन आचार्य को कौन बोल सकता है, वो तो नग्न दिगंबर होके जंगल में बैठे थे,
मतलब ही नहीं है।
उनके पर आरोप लगाने की बाह्य परिस्थिति भी नहीं है। दूसरे पर तो आरोप लग जाए कि तुम ऐसी बात करते हो क्योंकि तुमको ऐसा कुछ करना नहीं है ना, इसलिए तुम लोग ऐसी बात करते हो। परीक्षा भवन में नहीं हुआ था, दीक्षा लिया बाद में हुआ था। दीक्षा लेने के पहले बिना चारित्र किसी को मोक्ष केवल ज्ञान होवे वो सिद्धांत विरुद्ध बात है, ऐसी बहुत गड़बड़ी है इसमें। किसी को भी चारित्र ग्रहण किए बिना मोक्ष हो जाए ऐसा बनता नहीं है। तो वो कथा दिगंबर शास्त्र में दूसरी तरह से आती है कि अंगुली से वो मिट्टी निकल गई तो वैराग्य हुआ, तो इस वक्त लोकांतिक देव आते हैं या तीर्थंकर हो गए, तो वरना वैराग हो जाता है तो स्वयं दीक्षित हो जाता है। दीक्षित होने के बाद ध्यान में बैठते हैं तब सप्तम गुण स्थान आता है, इसके पहले सप्तम गुण स्थान नहीं आता, छठा तो आने का सवाल ही नहीं हुआ, क्योंकि पहले सप्तम आता है मुनि दशा में। लोगों को कोई पता नहीं है गुण स्थान कैसे आता है, कब आता है, किस क्रम से आता है, वो भी पता नहीं है। वो तो कपड़ा फेर लिया या ड्रेस बदल दिया या भेष बदल दिया कि हो गया मुनि जाओ, ऐसा नहीं है। दीक्षा की विधि चलती है वहां तक तो मुनि नहीं है। मुनि दीक्षा दिया, प्रतिज्ञा लेते हैं कि आगामी सर्वकाल में शुद्धोपयोग में रहूंगा। कहाँ रहूंगा? आत्मा में रहूंगा, व्रतशील संयम में नहीं रहूंगा। वो प्रतिज्ञा नहीं लेते। और फिर सप्तम गुण स्थान में आते, फिर विकल्प आवे तो छठे में आवे, लेकिन भरत महाराजा छठे में आए
नहीं।
न उन्होंने कोई व्रत पालन किया, न कोई उन्होंने तपस्या की, न कोई उन्होंने पंचमहावत आदि का 28 मूल गुण का व्यवहार किया, सीधा ही सप्तम गुण स्थान में से श्रेणी लगा दी, 8वें, 9वें, 10वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। मरुदेवी माता स्त्री तो थी नहीं, पहले तो वो पुरुष थे, मल्लीनाथ कुंवर थे वो। ये सब बहुत गड़बड़ी है, किसी को हाथी के उदय हो जाता है, किसी को नाते नाते होता है, किसी को सब्जी काटते काटते हो जाता है, ये सभी गड़बड़ी बहुत है उधर। ये सब गड़बड़ी ऐसे कभी केवल ज्ञान होता नहीं है। हाँ, संप्रदाय के कुंडाले में फंसने वाले को निकलना बहुत मुश्किल है। यहाँ तो प्रारंभ में वो बात है कि मेरा कोई संप्रदाय नहीं है, कोरी पाटी हो जाना, मेरा कोई संप्रदाय नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा का कल्याण जैसे कैसे भी हुए वही मुझे करना है, मेरे कोई संप्रदाय से लेना देना नहीं है।
हाँ,
एक अंश भी नहीं जानता ऐसा कर लेना, मैं जानता हूँ ये बात छोड़ देना। सबसे कोई बड़ी आपत्ति है तो मैं जानता हूँ वो है, वो छोड़ देना, क्लीन स्लेट हो जाना, ये बात है। तो सही बात बैठेगी, इसके पहला जगह नहीं है, अवकाश नहीं है। सत्य की जिज्ञासा बिना विचार की भूमिका में, सत्य की जिज्ञासा बिना सत्य का स्थान सत्य को मिलता नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि नहीं कहा, समागम सार में कहा है वो 1006 कृष्णामृत 1006 नंबर वाला है, 1007 है। जिज्ञासु जीव को सत्य का स्वीकार होने के अर्थ होने के लिए अंतर विचार के स्थान में, देखो भाई मैंने लिया वो इधर, अंतर विचार के स्थान में मैंने श्रद्धा ज्ञान साथ में लेना, ज्ञान के साथ विश्वास पैदा होना चाहिए, ज्ञान के साथ भावना होनी चाहिए, भावना फलवती होती है, निष्फल जाती नहीं, ज्ञान शुष्क ज्ञान नहीं होना, भावना वाला ज्ञान होना, भावना समेत ज्ञान होना, जब भी श्रद्धा होगी तभी चारित्र होगा, जब भी पुरुषार्थ होगा। अंतर विचार के स्थान में सत्य को समझने का अवकाश खाली जगह अवश्य रखनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो सत्य सुनने को मिलेगा लेकिन ग्रहण होगा नहीं, ये बात हो जाएगी। कैसे जानेंगे, हमने तो हमारी पूरी पुरानी बात छोड़ी नहीं, तो नई बात तो स्थान प्राप्त नहीं करेगी। लौकिक बात है, अज्ञान ही बंध का कारण है। अंतरंग लिया है, वहाँ भी अंतरंग लिया, हाँ सुल्ताना, अंतरंग में उल्टा है वो, अंतरंग में सुल्ताना, मूल में से काम करना, ऊपर ऊपर से काम करना नहीं, अंदर में जो जमी है उल्टी श्रद्धा उल्टा ज्ञान, उसको मूल में से उखाड़ करके सुल्टी श्रद्धा और सुल्टा ज्ञान करना। अज्ञान ही बंध का कारण है, क्योंकि उसके अभाव में स्वयं ही ज्ञान रूप होने वाले ज्ञानियों के बाह्य व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्मों का सद्भाव होने पर भी मोक्ष का सद्भाव है। क्या अज्ञान ही बंध का कारण है, क्योंकि उसके अभाव में अगर अज्ञान नहीं हो रहा और ज्ञान प्राप्त हुआ तो स्वयं ही ज्ञान रूप होने वाले ज्ञानियों के बाह्य में भले ही व्रत नियम शील तप इत्यादि नहीं है, शुभ कर्मों का अभाव है, ये भरत महाराज को शुभ कर्म का अभाव था फिर भी उसको मोक्ष का सद्भाव है, और द्रविलिंगी को ये व्रत नियम शील तप का सद्भाव है, पुण्य बंध का कारण होता है, मोक्ष का कारण नहीं होता है। देखो कितना वैसे वर्षा बात लिया है कि एक को तो व्रतशील संयम का सद्भाव होने पर भी अज्ञान के कारण मोक्ष का अभाव है, और ज्ञान होने से व्रतनील संयम इत्यादि का सद्भाव होने पर असद्भाव होने पर भी मोक्ष का सद्भाव है, उसको उसको मोक्ष मिलेगा। जिसका श्रद्धा ज्ञान ठीक हुआ उसको मोक्ष मिलेगा। श्रद्धा ज्ञान की गिनती करो ऐसा कहते हैं, क्योंकि दोनों विराधक भाव है। क्या
विराधक भाव है?
शुभ और अशुभ दोनों विराधक भाव है, पर तुम विराधक भाव के चक्कर में फंसा है कि ये विराधक भाव अच्छा है और ये विराधक भाव अच्छा नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि दोनों विराधक है, और अज्ञान है वो बड़ा विराधक है ऐसा जानना, वही अज्ञान है वो सबसे बड़ा विराधक है। वहां क्या दो अपराध होता है कि एक को तो शुभ भाव है वो विराधक है, उसको विराधक नहीं जानता, और नहीं जानता ऐसा एक अज्ञान का अपराध भी है, शुभ भाव को सेवन करना और उसको अज्ञान को भी सेवन करना। ऐसे एक आदमी रास्ते पे निकला, हाथ में दारू की बोतल थी, पुलिस ने पकड़ा, चल कोठरी में चल। बोला कि क्या है, मैंने क्या अपराध किया, तुझे तेरे हाथ में दारू है, दारू पीना मना है हमारे हमारे राज में, क्या तुम दारू लेके निकला है तो क्या है, पिएगा तू पिएगा। हाँ पीने के लिए तो जाता था। तो चलो तो हमारा हमको हम क्या करें, हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा कानून है कोई। राज का भाव आया वो पहला अपराध है, और उसका अज्ञान है वो दूसरा अपराध है। ऐसे शुभ भाव को ग्रहण करना वो पहला अपराध है, और ग्रहण करने से बंद होता है मोक्ष नहीं होता है ऐसा अज्ञान वो दूसरा अपराध है। दो अपराध साथ में है, अज्ञान बड़ा अपराध है, कोर्ट में ऐसा कहते हैं न्याय कोर्ट में, इग्नोरेंस इज फॉल्ट। तुम्हारा पहला दोष कहाँ है कि तुमको कानून का अज्ञान है, वही तुम्हारा पहला अपराध है। हाँ ये एक्सक्यूज नहीं थी, वो बचाव का कारण नहीं है, हमको पता नहीं था वो बचाव नहीं चलता। कोई अनजाने में जहर खाता है तो वो बचाव कर सकता है कि क्या करे, हमने तो भूल में खाया है, भूल में खा के जान करके खा, जहर खाएगा वो मरेगा, सीधी बात है। भावार्थ, ज्ञान रूप परिणमन ही मोक्ष का कारण है। अभी देखो आत्मा का ज्ञान ऐसा कोई नहीं लिया, क्या ज्ञान रूप परिणमन ही मोक्ष का कारण है। ज्ञान का ज्ञान में स्वसंवेदन होता है, वही ज्ञान रूप परिणमन है, उसमें श्रद्धा चारित्र सब उसमें समाविष्ट है। क्या ज्ञान रूप परिणमन में श्रद्धा ज्ञान चारित्र दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आ जाता है, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग होने से ये मोक्ष का कारण होता है। और अज्ञान रूप परिणमन ही बंध का कारण है, ज्ञान को ज्ञान रूप परिणमन नहीं करके अज्ञान रूप परिणमन करता है, ज्ञान का अज्ञानत्व करता है। तो मुझे अच्छा लगता है, मीठा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये अज्ञान रूप परिणमन है, वो बंध का कारण है। व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ भाव रूप शुभ कर्म कहीं मोक्ष के कारण नहीं है, कहीं मैंने थोड़ा भी मोक्ष का कारण नहीं है, मोक्ष तो नहीं है लेकिन मोक्ष का थोड़ा कारण भी नहीं है। नहीं है, नहीं वो तो ही हो गया, कारण का कारण हो गया, नहीं है ऐसा कुछ है नहीं।
मोक्ष तो कारण नहीं तो क्या होगा,
बंध का कारण खुली बात है, पुण्य बंध का कारण होता है, बंध का ही कारण है मोक्ष का कारण, जो पुण्य का बंध का कारण होता है वो मोक्ष का कारण नहीं होता, जो मोक्ष का कारण होता है वो बंध का कारण त्रिकाल में नहीं होता, सीधी बात है। हाँ सोने की बीड़ी है,
लड्डू खाना मोक्ष में जाए,
लड्डू खाना वो भी बंद का कारण है और लड्डू नहीं खाना वो भी बंद का कारण है। ये बात है, लड्डू खाना तो बंद का कारण है लेकिन उपवास करना वो भी बंद का कारण है, वो निर्जरा का कारण नहीं है ऐसा कहते हैं। संप्रदाय में सब गड़बड़ बहुत है। क्या कहते हैं कि ये शुभाव रूप शुभ कर्म कहीं मोक्ष के कारण नहीं है अपितु बंध के कारण है। ज्ञान रूप परिणमित ज्ञानी के वे शुभ कर्म न होने पर भी जो ज्ञान रूप परिणम गया वो ज्ञानी उसको ऐसा शुभ कर्म न होने पर भी वो मोक्ष को प्राप्त करता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। शुभ कर्म मोक्ष को ले आता है ऐसी बात नहीं है,
रुकावट है, रुकावट है,
वो तो रुकावट है। इसको छोड़ने से मोक्ष होता है, करने से नहीं होता है, छोड़ने से होता है। वो तो निकल जाता है क्योंकि वो काम की चीज नहीं है, उसको पकड़ते नहीं ज्ञानी इसलिए वो निकल जाता है। ज्ञान रूप परिणमित ज्ञानी के वे शुभ कर्म न होने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त करता है तथा अज्ञान रूप परिणमित अज्ञानी जीव के वे शुभ कर्म होने पर भी वह बंध को प्राप्त करता है। बंध रुचि वाला सर्वत्र बंध को प्राप्त करता है और मोक्ष रुचि वाला कहीं भी बंध को प्राप्त नहीं करता है। ये देखना है कि बंध की रुचि है या मोक्ष की, क्योंकि मोक्ष की भूमिका में तो रुचि मुख्य वस्तु है। क्यों मोक्ष होगा उसमें धर्म कैसे खलास होगा भाई? मोक्ष तो होगा उसको, उसमें धर्म कैसे खलास? बिना धर्म मोक्ष हो जाएगा क्या? ये धर्म की मिथ्या मान्यता खलास हो जाएगी क्या?
क्या
धर्म की जो मिथ्या मान्यता है वो खलास हो जाएगी, धर्म खलास नहीं होगा, सही धर्म की प्राप्ति होगी। माता धर्म तो प्रकट होगा और वृद्धिगत होगा और पूर्ण धर्म होकर के मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष की तो बात करते हैं, पंचमारा है इसलिए मोक्ष नहीं होगा ऐसा नहीं कहा, मोक्ष होगा यही बात करते हैं इधर तो। પુણ્ય છે એ મળ છે, એરંડિયું ક્યાં મળે છે? પુણ્ય છે એ મળ છે, નહી પાપ ને કાઢવા માટે પુણ્ય સંગ્રહ એમ કે છે, પણ એને ભ્રાંતિ છે કે આ એરંડિયું છે ને એ જ મળ છે પાછો, એમ કેવું છે? જેમ પાપ મળ છે એમ પુણ્ય પણ મળ છે એમ કે છે, એ દવા છે એવી ભ્રાંતિ ખોટી થઈ છે એમ કેવું છે? આશ્રમના જ ભેદ છે, પુણ્યાશ્રમ ને પાપાશ્રમ, પુણ્ય બંધ ને પાપ બંધ, બંધ ના કારણ છે તત્વ દ્રષ્ટિ છે કે નહીં પહેલા તો એ વાત છે। તત્વ દ્રષ્ટિ મેં એક તત્વ દૂસરા તત્વ નહીં હો સકતા, જો આશ્રમ તત્વ હૈ તો સમર તત્વ નહીં હો સકતા, જો બંધ કા કારણ હૈ વો મોક્ષ કા કારણ વો તત્વ નહીં હો સકતા, સીધી વાત હૈ। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। यदि तद ज्ञानात्मा ध्रुवमचलम भाति भवनम शिवस्यायम हेतु स्वयमपि यतत् शिव इति अतो अन्यद् बंधस्य स्वयमपि यतो बंध इति तत् ततो ज्ञानात्मात्मम भवनम अनुभूतिर्हि विहितम्। देखो अनुभूति को विहित किया है, विहित किया है, अनुभूति करो ऐसा कहा है। धर्म के क्षेत्र में तो अनुभव करने को बुला है, पुण्य करने को बुला नहीं है। जो है ज्ञान स्वरूप आत्मा ध्रुव रूप से अचल रूप से ज्ञान रूप होता हुआ परिणमता हुआ भाषित होता है। देखो ध्रुव को कैसा देखा, आचार्य महाराज ने, ये तो ध्रुवम अचलम ज्ञानात्मा भवनम आभाति। ध्रुव आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप परिणमता हुआ हमको भाषित होता है, अनुभव होता है। ये तो ज्ञान ध्रुव ज्ञान स्वरूप ध्रुव आत्मा है, वो तो ज्ञान स्वरूप परिणमता है, वही मोक्ष का हेतु है। और ऐसा परिणमन ही मोक्ष का कारण है, क्योंकि वह स्वयं मोक्ष स्वरूप है। ये परिणमन ही बंध का अभाव स्वरूप है, मुक्त भाव रूप परिणमन है, मोक्ष मार्ग है। उसमें बंध मार्ग नहीं, बंध मार्ग में मोक्ष मार्ग नहीं, इसलिए स्वयं मोक्ष स्वरूप है। उससे अतिरिक्त अन्य जो कुछ है, ये ज्ञान रूप परिणमन आत्मा रूप परिणमन के अलावा अन्यत्र कहीं भी कोई जो कुछ परिणमन है, वह बंध का हेतु है। आत्मा को छोड़ करके परिणाम किसी अन्य द्रव्य में अन्य भाव में जाता है, ये अन्य द्रव्य में प्रतिबद्ध होता है, यही भाव बंध है। प्रतिबद्ध मैंने संबंध करता है, यही भाव बंध है। इस भाव बंध से नया कर्म बंध होगा, क्योंकि वह स्वयमेव बंध स्वरूप है। यह भाव स्वयं प्रतिबद्ध होता हुआ बंध स्वरूप है। इसलिए आगम में देखो, ये जिनागम की बात करते हैं, दूसरी बात नहीं करते हम। इसलिए जिनागम में ज्ञान स्वरूप होने का अर्थात अनुभूति करने का ही विधान है। ये पूजा का विधान करते ऐसा विधान नहीं है, कैसे कहते हैं विधान आया ना,
आया
अष्टानिका में विधान हो गया ना, ये सही विधान है क्या?
नहीं,
ये विधान ये
भगवान
वो ठीक है, वो भाव पूजा जिसको अंदर में विधि होती है उसके लिए वो बात है। किसके लिए है?
होती है
अंदर में, जिसको ज्ञान स्वरूप होने का परिणमन होता है उसके पर द्रव्य पूजा का आरोप आता है। जहाँ भाव पूजा नहीं है वहाँ द्रव्य पूजा भी नहीं है, होते हुए भी नहीं है। क्या जिसको भाव पूजा का परिणाम नहीं है अपने आत्मा में, वो द्रव्य पूजा करता है तो भी उसको द्रव्य पूजा गिनने में नहीं आती।
यानी तोते यदि स्थिति है राम नाम बोले तो भी राम नहीं माना,
हाँ नहीं माना जाता। तोता राम नाम पढ़ता है, रटता है, तो उसको पुण्य भी होता
नहीं,
नहीं है,
तो भाव
है?
भाव नहीं है,
उसको पुण्य होता है क्या?
नहीं होता
है। तोता को राम बोलने से पुण्य होता है? नहीं होगा। क्यों? उसको ये लगा कि राम भी कोई फल होगा, मैं रटूंगा तो मुझे खाने को मिलेगा, वो तो पाप भाव में बोलता है। इसलिए भाव से काम होता है, द्रव्य से काम
नहीं होता।
इसलिए आगम में ज्ञान स्वरूप होने का यानी ज्ञान स्वरूप परिणमन करने का ही विधान है। अनुभूति करो, अनुभूति करने का ही विधान है। देखो, अनुभूति करने का ही ऐसा लिया है, अनुभूति ही संस्कृत में भी ही शब्द लगाया है। फिर भी द्रव्य पूजा करना कि नहीं करना बोलो, लेकिन यहाँ तो ही लगाया है, उन्हें कल से हम नहीं करेंगे, ठीक क्या करेगा? अनुभूति करो, फिर कोई आपत्ति नहीं है। अनुभूति भी नहीं करो, पूजा भी नहीं करो, तो क्या करोगे कि दुकान पर चले जाओगे और उल्टा चला, और उल्टा चला। जो पुण्य का निषेध में आकर के पाप को ग्रहण करता है वो अधिक नुकसान करता है निश्चयाभासी होकर के। यहाँ तो अनुभूति आत्मा के आनंद स्वरूप का अनुभव करने के लिए पुण्य का जहर को छुड़ाया है। क्या? आनंद अमृत पिलाने के लिए पुण्य का जहर छुड़ाया है, ऐसी बात है। लेकिन पाप करने के लिए पुण्य छुड़ाया नहीं है, ऐसी बात है। आगे ले जाने के लिए बात है, पीछे ले जाने के लिए बात
नहीं है,
ऐसी बात है।
પાપ
કરો તો वो सब कचरा साफ करना पड़ेगा, फिर ये सब कचरा बड़ा है वो निकालना पड़ेगा। इसलिए तो ये अधिकार बराबर पाप आए और अधिकार भी वही आया, देखो मौके पर आया है। घर पे ग्रंथ ले जाना और बराबर पढ़ना, विचार करना, चिंतन करना, मंथन करना कि ये क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। ये मोक्ष में ले जाने के लिए बात है, संसार के जन्म मरण छुड़ाने के लिए बात है, ऐसी बात है। फालतू बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। फालतू बात नहीं है किंतु बहुत गंभीर बात है। उनको भी जो छुड़ाना चाहते हैं, कहने वाले कौन है तो कहे जैनाचार्य है। कौन है? जैनाचार्य है कहने वाले। और क्या कहते हैं कि भगवान तीर्थंकर जिनेन्द्र परमात्मा ने ऐसा कहा है, तो विधान शब्द लिया ने, तो विधान शब्द मैंने आगम परंपरा में ये बात चलती है। कहाँ से आगम निकले? तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में से सभी आगम निकले, गणधर देव ने रचे, फिर गुरु परंपरा से अभी चलते हैं। इसलिए आगम का आगम में तो ऐसा विधान है कि तुम जैसे कैसे भी आत्मानुभूति करो, आत्मानुभूति ही मोक्ष मार्ग है, आत्मानुभूति करने का ही आगम में विधान है। आत्मानुभूति जिसने किया उसको बार अंग का सार ग्रहण कर लिया, कोई बात बाकी नहीं रही। श्रीमद जी ने तो बहुत लिखा है, तो याद नहीं है, बहुत अच्छा है। शुद्धोपयोग में उत्कृष्ट माँ उत्कृष्ट तप, उत्कृष्ट माँ उत्कृष्ट व्रत, उत्कृष्ट माँ उत्कृष्ट जप, उत्कृष्ट माँ उत्कृष्ट बधु ले लीधू है, सो संयम शुद्धोपयोग में समाविष्ट होता है, ऐसा करके लिखा है। अनुभूति में सब
आ जाता है।
मैंने अनुभूति तो इससे बहुत आगे है। क्या ऐसे जो व्रतशील संयम के शुभ परिणाम है, इससे तो अनुभूति बहुत आगे की चीज है, मामूली चीज नहीं है। ये सब मामूली चीज है, ये तो इसमें सब समाविष्ट हो गया, ऐसा कहते हैं।
जमीन आसमान का अंतर है,
इतना बड़ा अंतर है। पर वो ये हो सकता है चारों गति में, किसी भी हर हालत में ये हो सकता है। पहले हमारे करने के परिणाम में तैयारी होनी चाहिए, ऐसी बात है।
जब तक जमीन नहीं छोड़ेगा तो कैसे उड़ेगा।
जमीन को तो छोड़ना पड़ेगा, ऐसी बात है। अब फिर भी पुण्य कर्म के पक्षपाती को समझाने के लिए उसका दोष बतलाते हैं। क्या 154 गाथा का हेडिंग क्या है? अथ पुनरपि पुण्य कर्म पक्षपाती नः प्रतिबोधनाय उपक्षीपति। देखो पुण्य कर्म का पक्षपात हो गया है जीव को, क्या पाप को छोड़ना और पुण्य को करना। ये पुण्य कर्म का पक्षपाती को कैसा दोष लगता है, कौन सा दोष लगता है कि उसको अज्ञान और मिथ्यात्व का सबसे बड़ा दोष लगता है। एक बाजू पुण्य का पक्षपाती क्या कहता है? क्या पाप बिल्कुल नहीं करना है, क्या
पाप बिल्कुल नहीं करना।
एक इंद्रिय की भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, हमारे मन वचन काया के निमित्त से एक इंद्रिय की भी हिंसा नहीं हो, और अज्ञान से अपना परम स्वरूप है, परमात्मा है, उसकी हिंसा करता है, क्या
खुद की
सबसे बड़ी हिंसा करता है, और बाहर में एक इंद्रिय की हिंसा करने को ना बोलता है। इसी का नाम घोर अज्ञान है। पानी गली ने पिए एम के लोहे अलगण पिए। हाँ शू छे कहवाता જૈનો ના આચાર વિચાર ને વ્યવહાર જોઈને કે આ લોકો ઘરે જઈને ગળેલું પાણી પીએ છે, પણ આપણું તો અળગણ લોહી પીએ છે એમ કે શું આ કઈ જાતના માણસો છે એમ કે, હા એવી એક છાપ પડી ગઈ છે। यहाँ कहते हैं कि देखो पुण्य कर्म का पक्षपात करना ये सबसे बड़ा पाप है। पाप नहीं करना है ना, तो छोटा नहीं करना और बड़ा करना, ये कोई बुद्धिमानी है या मूर्खता है, क्या है? व्याज नहीं खाना है मुसलमान क्या करता है? हम मक्का हज पढ़ के आए इसलिए हाजी होगी, हमको व्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन ईद के दिन मांस खाना चाहिए, बकरे का मांस खाता है, बकरे ईद है, ऐसा करके तो छोटा पाप छोड़ता है बड़ा पाप को करता है। इधर पुण्य करने के हिसाब से पाप को छोड़ता है और अज्ञान सेवन करके सबसे बड़ा पाप करता है, क्या फर्क हुआ? कि अज्ञान में ऐसा ही होता है, छोटा पाप को छोड़ दो और बड़ा पाप कितना होता है उसका भान पड़ता नहीं है, बेभान दशा हो जाती है। तो ये छोड़ाने के लिए आचार्य महाराज जागृत करते हैं, जगाते हैं कि भैया ये छोटा छोटा पाप तो तूने बहुत बार छोड़ा, अनंत बार छोड़ा, लेकिन मूल पाप का बाप है उसको तो छोड़ा नहीं है, तो उसको तो छोड़ पहले, मूल को तो काट, पत्ता तोड़ता है पर मूल ऐसा का वैसा रहता है तो ये तो फिर हरा भरा हो जाएगा। ये मूल काटने के बाद चलती है समयसार में, आचार्य महाराज 154 गाथा में वो बात विशेष रूप से कहेंगे। यहाँ तक।